एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये चर्चा एकत्र एआई की मदद से तैयार की गई है। आज हम एक बहुत ही मुश्किल और भारी किताब पर बात करने जा रहे हैं, एडोल्फ हिटलर की मीन कैम्प, जिसका मतलब है मेरा संघर्ष। ये सिर्फ एक आत्मकथा नहीं थी, है ना? ये तो उसके खतरनाक इरादों का एक तरह का ऐलान था।
हाँ बिल्कुल, एक ऐसा दस्तावेज जिसमें उसकी वो भयानक यहूदी विरोधी नफरत, वो नस्लवादी सिद्धांत और आगे चलकर जो नरसंहार हुआ, उसकी एक तरह से रूपरेखा छिपी थी।
और हम जिन स्रोतों को देख रहे हैं वो हमें इसकी गहराई समझने में मदद करते हैं।
बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि हम इसे किसी आम नॉन फिक्शन किताब की तरह नहीं देख सकते। ऐसा करना बहुत खतरनाक होगा।
क्यों? मतलब क्या खतरा है?
खतरा ये है कि हम उसमें लिखी बातों को, उन खतरनाक विचारों को सामान्य मान बैठेंगे। ये किताब विवादास्पद और खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसने सीधे सीधे लाखों लोगों की मौत की जमीन तैयार की।
हाँ, ये बात तो है।
तो इसका विश्लेषण बहुत सावधानी से और एक गंभीर ऐतिहासिक नजरिए से करना पड़ता है।
बिल्कुल। अच्छा, एक बार याद दिलाते हैं कि एडोल्फ हिटलर कौन था। नाजी पार्टी का नेता, 1933 में जर्मनी का चांसलर बना और फिर तानाशाह, फ्यूरर।
हाँ,
लेकिन दिलचस्प बात यह है, और शायद बहुत लोग ये नहीं जानते होंगे, कि जब उसने मीन कैम्प लिखी, पहला हिस्सा 1925 में, दूसरा 1926 में,
हाँ,
तब वो असल में जेल में था।
सही कहा। वो 1923 में म्यूनिख में तख्ता पलट की एक नाकाम कोशिश, जिसे बियर हॉल पुच कहते हैं, उसके बाद सजा काट रहा था लैंड्सबर्ग जेल में।
वहीं उसने किताब लिखनी शुरू की। एक असफल क्रांतिकारी था वो उस वक्त, राष्ट्र प्रमुख नहीं।
तो सवाल ये उठता है कि भाई, आज इतने साल गुजर जाने के बाद इस नफरत से भरी किताब को समझने की जरूरत क्या है?
हाँ, ये सवाल तो मन में आता है।
इसलिए नहीं कि इसमें कोई ज्ञान है, बल्कि इसलिए ताकि हम समझ सकें कि ऐसी विनाशकारी विचारधाराएं कैसे पनपती हैं, कैसे फैलती हैं।
अच्छा,
और कैसे हम तानाशाही, नस्लवाद और इस तरह के राजनीतिक कट्टरता के शुरुआती संकेतों को पहचान सकते हैं,
मतलब एक चेतावनी के तौर पर।
बिल्कुल, हमारी ये चर्चा पूरी तरह से ऐतिहासिक समझ बनाने और भविष्य के लिए एक चेतावनी के तौर पर है। इसके विचारों का कोई समर्थन नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें इसके जहर को समझना है ताकि हम उससे बच सकें।
तो चलिए देखते हैं कि ये सोच बनी कैसे, कहाँ से शुरू हुई ये कहानी। हिटलर के शुरुआती सालों से शुरू करते हैं। जन्म हुआ ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर ब्राउनाउ एम इन में। पिता थोड़े सख्त मिजाज के थे, माँ का प्यार मिला।
हाँ, एक आम मध्यम वर्गीय परिवार जैसा माहौल लगता है शुरू में।
वो कलाकार बनना चाहता था, है ना? और पिता चाहते थे कि वो सरकारी नौकरी करे।
हाँ, ये एक कश्मकश थी उसके जीवन में, लेकिन असली मोड़ तब आया जब वो वियना गया।
वियना कला का केंद्र।
हाँ, लेकिन उसे वहाँ की आर्ट एकेडमी में दाखिला नहीं मिला। दो बार कोशिश की, दोनों बार नाकाम रहा।
उफ़।
और फिर वो वहाँ गरीबी में जीने लगा। हिटलर अपनी किताब में, मतलब मीन कैम्प में, दावा करता है कि यहीं वियना में उसकी आंखें खुली।
आंखें खुली किस मतलब से?
उसका कहना है कि उसने वियना की सड़कों पर, वहाँ के माहौल में, सामाजिक लोकतंत्रवादियों को, ट्रेड यूनियनों को और सबसे ज्यादा यहूदियों को पहचाना।
पहचाना?
हाँ, वो दावा करता है कि यहीं उसे तथाकथित यहूदी प्रश्न समझ में आया और वो एक कट्टर यहूदी विरोधी बन गया। ये उसके पहले खंड के दूसरे अध्याय में है।
तो ये उसकी नफरत की शुरुआत थी वियना में।
उसी के शब्दों में, हाँ, ये उसकी नफरत के सिद्धांत की नींव थी और उसने इसे अपनी निजी असफलताओं और कुंठाओं पर खड़ा किया। ये बड़ा अहम है।
तो क्या ये सिर्फ उसकी अपनी कड़वाहट थी या उसने इसे किसी बड़ी थ्योरी से जोड़ा?
यही तो उसकी चालाकी थी। उसने अपनी निजी भड़ास को, अपनी नाकामियों को, एक बड़े वैश्विक षड्यंत्र के सिद्धांत में बदल दिया।
अच्छा।
उसने यहूदियों को सिर्फ अपनी मुसीबतों का कारण नहीं बताया, बल्कि जर्मनी की हर समस्या, गरीबी, राजनीतिक उथल पुथल, यहां तक कि कला का पतन, सबका जिम्मेदार ठहरा दिया।
बाप रे।
ये एक पैटर्न है जो बार बार दिखता है, अपनी समस्याओं के लिए किसी और को, किसी एक समूह को बलि का बकरा बना देना।
इसके बाद पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। हिटलर के लिए ये कैसा अनुभव था? वो तो इसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर बताता है, जैसे उसे कोई मकसद मिल गया हो। उसने जर्मन सेना की बेवेरियन रेजिमेंट में खुशी खुशी भर्ती ली।
हाँ, वो युद्ध के अनुभव की, मोर्चे पर सैनिकों के बीच के भाईचारे की बातें बड़े जोश से करता है अपनी किताब में। लेकिन युद्ध का अंत जर्मनी की हार के साथ हुआ। ये उसके लिए एक बड़ा झटका रहा होगा।
हाँ, बहुत बड़ा झटका, और युद्ध के बाद का जो दौर था वो शायद और भी ज्यादा निर्णायक साबित हुआ। वो घायल था, अस्पताल में था, जब उसे जर्मनी की हार और सम्राट काइजर की गद्दी छोड़ने की खबर मिली।
और उसने इस हार को कैसे लिया?
उसने इसे सेना की हार मानने से ही इनकार कर दिया।
अच्छा, हाँ, उसने कहा ये पीठ में छुरा घोंपने का नतीजा है। उसका मानना था कि देश के अंदर बैठे मार्क्सवादियों और यहूदियों ने जर्मनी को धोखा दिया है।
ये स्टैब इन द बैक में था, ये तो बहुत सुना है।
हाँ, और हिटलर लिखता है कि इसी पल जब उसे ये खबर मिली उसने राजनीति में आने का फैसला किया। ये उसके पहले खंड के सातवें अध्याय का एक तरह से केंद्रीय भाव है।
तो यहीं से उसका राजनीतिक सफर असल में शुरू हुआ।
बिल्कुल, युद्ध के बाद वो म्यूनिख लौटा और सेना के लिए ही एक तरह से राजनीतिक जासूस का काम करने लगा।
जासूस का काम?
हाँ, उसका काम था कि वो देखे कि नई नई जो राजनीतिक पार्टियां बन रही हैं वो क्या कर रही हैं। इसी दौरान वो एक छोटी सी अनजान सी पार्टी जर्मन वर्कर्स पार्टी DAP की मीटिंग में गया।
DAP?
हाँ, वहां किसी स्पीकर की बात उसे पसंद नहीं आई। वो खुद बोलने खड़ा हो गया और उसने ऐसा जोरदार भड़काऊ भाषण दिया कि पार्टी के नेता एकदम प्रभावित हो गए।
अच्छा,
उन्होंने उसे फौरन पार्टी में शामिल होने का न्योता दे दिया और यहीं से कहानी बदल गई। बहुत जल्द वो पार्टी का मुख्य वक्ता और प्रचारक बन गया।
और उसने पार्टी को अपने हिसाब से ढालना शुरू कर दिया होगा।
बिल्कुल, उसने पार्टी का नाम बदला, उसमें नेशनल सोशलिस्ट जोड़ा, स्वस्तिक का निशान अपनाया और उसे पूरी तरह अपनी विचारधारा का मंच बना दिया।
तो ये किताब मीन कैम्प फिर सिर्फ उसकी कहानी या विचार नहीं रही, ये तो नाजी पार्टी का मैनिफेस्टो बन गई है ना?
हाँ बिल्कुल, ये पार्टी के लिए एक वैचारिक गाइडबुक की तरह थी। इसके मकसद साफ थे। पहला, जर्मनी की समस्याओं का अपना एक नजरिया पेश करना। दूसरा, उन समस्याओं के लिए बलि का बकरा ढूंढना, खासतौर पर यहूदी और मार्क्सवादी।
और तीसरा,
एक समाधान पेश करना जो नस्लीय शुद्धता, तानाशाही और विस्तारवाद पर आधारित था। इसने नाजी पार्टी को एक दिशा दी, एक दुश्मन दिया और एक झूठा सपना दिया।
और इसकी विरासत वो तो हम जानते ही हैं, इतिहास का सबसे भयानक सच, नाजी शासन, दूसरा विश्व युद्ध, होलोकॉस्ट।
हाँ, जिसमें लाखों यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यकों का योजनाबद्ध तरीके से कत्लेआम किया गया। ये किताब उन भयानक घटनाओं का वैचारिक आधार बनी, ये सोचकर भी रूह कांप जाती है।
सच में, अब अगर हम इस किताब के मूल दर्शन को, मतलब इसके कोर आइडियाज को समझने की कोशिश करें तो क्या बातें सामने आती हैं?
देखिए, इसमें कई जहरीले विचार हैं लेकिन कुछ खास हैं जो बार बार आते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे अहम है नस्लीय शुद्धता और आर्यन नस्ल की कथित श्रेष्ठता का विचार।
आर्यन रेस?
हाँ, हिटलर का मानना था कि इंसानियत अलग अलग नस्लों में बटी हुई है और इन नस्लों के बीच हमेशा एक संघर्ष चलता रहता है, और इसमें आर्यन रेस, खासकर जर्मन लोग, सबसे ऊपर हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, वही संस्कृति बनाने वाले हैं।
और नस्लों का मिलना,
वो उसकी नजर में सबसे बड़ा पाप था। नस्लीय मिश्रण से उसके हिसाब से सभ्यता का पतन होता है।
इसी से जुड़ा हुआ उसका वो भयानक यहूदी विरोध है।
बिल्कुल, ये उसकी सोच का दूसरा केंद्र बिंदु है। वो यहूदियों को कोई धर्म या समुदाय नहीं बल्कि एक अलग नस्ल मानता था।
एक नस्ल?
हाँ, और कैसी नस्ल? एक परजीवी नस्ल जो दूसरी सभ्यताओं में घुसकर उन्हें अंदर से खोखला कर देती है, ये उसका विचार था।
ये तो बहुत ही खतरनाक सोच है।
और उसने इस नफरत को हर उस चीज से जोड़ा जिससे वो खुद नफरत करता था, चाहे वो मार्क्सवाद हो, पूंजीवाद हो, लोकतंत्र हो, मॉडर्न आर्ट हो, सबके पीछे उसे यहूदियों का ही हाथ नजर आता था। एक वैश्विक षड्यंत्र का सिद्धांत,
हर चीज के लिए यहूदियों को दोष देना।
हाँ, तीसरा मुख्य विचार है फ्यूरर सिद्धांत, फ्यूरर प्रिंसिपल, मतलब एक नेता का शासन। हिटलर लोकतंत्र से सख्त नफरत करता था, उसे कमजोर, भ्रष्ट और यहूदी प्रभाव वाला मानता था।
तो वो क्या चाहता था?
वो एक ऐसा राज्य चाहता था जो एक नेता के इशारे पर चले, जहां नेता की इच्छा ही कानून हो। ये पूरी तरह से तानाशाही का खुला समर्थन था।
चौथा विचार जो सीधे सीधे युद्ध और विस्तार से जुड़ा है, लेबेंसराम।
हाँ, रहने की जगह। हिटलर का तर्क था कि जर्मनी की बढ़ती आबादी और ताकत के लिए और ज्यादा जमीन चाहिए।
और ये जमीन कहां से आएगी?
पूर्वी यूरोप से, खासकर रूस और दूसरे स्लाव देशों को हटाकर, उन्हें खत्म करके या गुलाम बना के। ये सिर्फ जमीन कब्जाने की बात नहीं थी, ये नस्ली सफाई और सैन्य विजय का एक मिलाजुला भयानक कार्यक्रम था।
और आखिर में एक और बात जो आपने बताई थी, संघर्ष का महिमा मंडन।
बिल्कुल, किताब का नाम ही है मेरा संघर्ष। हिटलर का मानना था कि संघर्ष, लड़ाई यही जीवन का नियम है, यही प्रगति का इंजन है, चाहे वो नस्लों के बीच संघर्ष हो, देशों के बीच या विचारों के बीच।
शांति और सहयोग उसकी नजर में कमजोरी थी।
हाँ बिल्कुल, ये डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत का एक बहुत ही विकृत और गलत सामाजिक इस्तेमाल था।
ये सारे विचार मिलकर एक बहुत ही डरावनी तस्वीर बनाते हैं। अच्छा, अब उन तीन खास मोड़ों पर आते हैं जिन्होंने हिटलर के जीवन और उसकी सोच को बदला, जैसा वो खुद मीन कैम्फ में बताता है। पहला तो आपने बताया वियना में उसकी वो तथाकथित जागृति। हाँ, जरा सोचिए उस स्थिति को। एक नौजवान है, कलाकार बनने का सपना टूट चुका है, गरीबी में जी रहा है, अकेला महसूस कर रहा है। और हिटलर कहता है कि इसी माहौल में उसने सड़कों पर घूमते हुए, कॉफी हाउस में बहसें सुनते हुए और खासकर यहूदी विरोधी पर्चे पढ़कर यहूदी समस्या को समझ लिया। वो लिखता है कि कैसे वो एक कमजोर विश्व बंधुत्ववादी से एक कट्टर यहूदी विरोधी बन गया।
और ये मोड़ इतना अहम क्यों है?
क्योंकि यही उसकी नफरत भरी विचारधारा ने एक शक्ल लेनी शुरू की। ये सिर्फ भावना नहीं रही, एक सिद्धांत बनने लगी।
हाँ, उसकी जो निजी असफलताएं थीं, जो कड़वाहट थी, वो अब एक बड़े दुश्मन के खिलाफ संगठित नफरत में बदल गई।
हाँ।
ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत अनुभवों को तोड़ मरोड़ कर एक खतरनाक राजनीतिक सिद्धांत बनाया जा सकता है। दूसरा बड़ा मोड़ था पहले विश्व युद्ध के अंत में वो विश्वासघात का अनुभव। जैसा हमने पहले बात की, वो गैस हमले के बाद अस्पताल में था।
हाँ।
जब उसे जर्मनी की हार की खबर मिली,
सोचिए उसकी मानसिक हालत। एक सैनिक जिसने बहादुरी दिखाई, वो अस्थायी रूप से अंधा है और उसे पता चलता है कि सब खत्म हो गया, देश हार गया, सम्राट भाग गया।
उसका फौरी रिएक्शन क्या था?
उसने नतीजा निकाला, सेना नहीं हारी है, हमें धोखा दिया गया है, अंदर के दुश्मनों ने, यहूदियों और मार्क्सवादियों ने पीठ में छुरा घोंपा है।
और ये इतना बड़ा बदलाव क्यों लाया?
हिटलर के अपने शब्दों में, इसी पल उसने तय किया कि वो राजनीति में जाएगा।
अच्छा।
उसका मकसद बन गया इस धोखे का बदला लेना, जर्मनी को फिर से महान बनाना। ये घटना उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की चिंगारी बनी, जिसने बाद में पूरे यूरोप को जला दिया।
और तीसरा मोड़?
तीसरा मोड़ था उसका जर्मन वर्कर्स पार्टी DAP में शामिल होना। ये उसके राजनीतिक जीवन की एक तरह से औपचारिक शुरुआत थी।
हाँ, वो सेना के लिए जासूसी करते हुए उस छोटी सी पार्टी की मीटिंग में गया था,
बहस सुनी, असहमत हुआ और फिर खुद उठकर बोलना शुरू कर दिया। उसका भाषण इतना जोरदार था, इतना भावनाओं को भड़काने वाला था
कि पार्टी के नेताओं ने उसे तुरंत पकड़ लिया।
हाँ, उसे फौरन नेतृत्व समिति में शामिल होने का न्योता दे दिया।
ये क्षण क्यों इतना निर्णायक था?
क्योंकि इसने हिटलर को वो मंच दिया जिसकी उसे तलाश थी।
हाँ, ये बात है।
एक गुमनाम सी पार्टी के जरिए उसे अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाने का, अपने विचारों को फैलाने का, अपनी भाषण कला को और निखारने का मौका मिला।
और फिर धीरे धीरे उसने उस पार्टी पर कब्जा कर लिया और उसे नाजी पार्टी में बदल दिया। ये उसके सत्ता तक पहुंचने का पहला मगर बहुत ठोस कदम था। तो इन सब बातों से, मतलब हिटलर के जीवन और मीन कैम्प के इस विश्लेषण से, हम आज क्या सीख सकते हैं? खासकर आज के माहौल में कौन सी चेतावनियां हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए?
सबसे पहली बात तो शायद ये है कि हमें नफरत की बनावट को समझना होगा। ये किताब दिखाती है कि कैसे निजी भड़ास, डर और पुराने पूर्वाग्रहों को एक व्यवस्थित, सोची समझी विचारधारा में बदला जा सकता है।
हाँ, जो फिर लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले सकती है। ये सिर्फ कच्ची भावना नहीं होती, ये एक रणनीति होती है।
और इसमें शब्दों का कितना बड़ा रोल होता है। दूसरा सबक शायद यही है, शब्दों की ताकत और अमानवीयकरण का खतरा।
बिल्कुल, हिटलर ने यहूदियों के लिए कैसे शब्द इस्तेमाल किए, परजीवी, कीड़ा, जहर, बीमारी,
उफ।
ये सिर्फ गालियां नहीं थी, ये एक तरीका था एक पूरे समुदाय को इंसान के दर्जे से गिरा देने का,
ताकि उनके खिलाफ हिंसा को जायज ठहराया जा सके।
हाँ बिल्कुल, ताकि लोग उन्हें इंसान समझना ही बंद कर दें। आज भी जब हम देखते हैं कि किसी समूह के लिए ऐसी भाषा इस्तेमाल हो रही है, तो हमें फौरन सतर्क हो जाना चाहिए, खतरे की घंटी बजनी चाहिए।
तीसरा सबक हमें शायद लोकतंत्र की नाजुकता याद दिलाता है।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। मीन कैम्प तब लिखी गई जब जर्मनी बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। आर्थिक संकट था, पहले विश्व युद्ध में हार के बाद राष्ट्रीय अपमान का बोझ था, राजनीतिक अस्थिरता थी।
ऐसे में लोग आसान जवाब ढूंढते हैं।
हाँ, और ऐसे माहौल में समाज अक्सर निराश होकर तानाशाही और कट्टरपंथी विचारों की तरफ खिंच जाता है, जो आसान समाधान और एक मजबूत नेचा का वादा करते हैं। ये याद दिलाता है कि लोकतंत्र कोई गारंटी नहीं है, इसकी हिफाजत हमें लगातार करनी पड़ती है।
और चौथा सबक है प्रोपेगेंडा के तरीकों को पहचानना।
हाँ, हिटलर प्रोपेगेंडा का मास्टर था। उसकी तकनीकें आज भी इस्तेमाल होती हैं।
जैसे कि?
जैसे बड़ा झूठ बोलना, मतलब इतना बड़ा झूठ बोलो कि लोग सोचने लगें कि यार इतना बड़ा झूठ कोई कैसे बोल सकता है, जरूर इसमें कुछ सच्चाई होगी।
हाँ हाँ,
बलि का बकरा बनाना, सारी समस्याओं के लिए किसी एक समूह को जिम्मेदार ठहरा देना, भावनाओं को भड़काना तल्क की बजाय लोगों के डर, गुस्से या गर्व को जगाना,
और चीजों को बहुत सरल करके दिखाना, दुनिया बस अच्छी या बुरी, काली या सफेद।
बिल्कुल, ये सारे तरीके मीन कैंप में साफ दिखते हैं और आज भी, खासकर सोशल मीडिया के दौर में, राजनीतिक बहसों में ये खूब इस्तेमाल होते हैं। इन्हें पहचानना बहुत जरूरी है।
निश्चित रूप से, आज के डिजिटल युग में तो ये और भी जरूरी हो गया है, जहां गलत सूचनाएं, नफरत भरे संदेश इतनी तेजी से फैल सकते हैं।
हाँ, हमें हमेशा सवाल पूछना चाहिए, ये खबर कहाँ से आ रही है, इसका मकसद क्या है, ये कौन सी भावनाओं को जगाने की कोशिश कर रही है। आलोचनात्मक सोच बनाए रखना बहुत जरूरी है।
तो इस पूरी काफी गंभीर और भारी चर्चा के अंत में अगर हमें तीन मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी?
तीन बातें।
पहली शायद एक भावनात्मक समझ हो सकती है। मीन कैंप ये दिखाती है कि कैसे निजी कड़वाहट, डर और पूर्वाग्रह को एक ऐसी सामूहिक नफरत में बदला जा सकता है जो भयानक अकल्पनीय हिंसा को जन्म दे। ये नफरत की भावनात्मक अपील की ताकत का एक बहुत ही डरावना उदाहरण है।
हाँ, ये दिल दहलाने वाली बात है। दूसरी एक बौद्धिक समझ हो सकती है। ये किताब दिखाती है कि कैसे एक बिल्कुल गलत, एक विकृत लेकिन अपने आप में सुसंगत लगने वाला विश्व दृष्टिकोण, जैसे नस्लीय श्रेष्ठता या वैश्विक षड्यंत्र, गढ़ा जा सकता है।
हाँ,
और फिर उसे प्रोपेगेंडा के जरिए फैलाया जा सकता है, भले उसका सच्चाई से कोई लेना देना ना हो। ये हमें विचारधाराएं कैसे बनती हैं और प्रचार तंत्र कैसे काम करता है, इसे समझने का एक मौका देती है, और एक चेतावनी भी
कि कैसे झूठ को सच बना के पेश किया जा सकता है।
बिल्कुल।
और तीसरी शायद एक सार्वभौमिक सीख।
और शायद सबसे अहम वो ये है कि खतरनाक विचारों को, खासकर जब वो लोगों के गहरे डर, उनकी असुरक्षा और उनकी शिकायतों से जुड़ते हों, उन्हें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए,
उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
कभी नहीं। मीन कैंप लोकतंत्र के महत्व, आलोचनात्मक सोच की जरूरत और खासकर अमानवीय बनाने वाली भाषा के खिलाफ लगातार आवाज उठाने की अहमियत की एक स्थायी चेतावनी है।
बिल्कुल।
मैं इसमें बस एक बात और जोड़ना चाहूंगा जो शायद इन सब चेतावनियों का निचोड़ है।
हाँ जरूर।
ये किताब दिखाती है कि जब कोई अपने इरादे इतने साफ साफ जाहिर कर रहा हो तो उसे गंभीरता से लेना कितना जरूरी है। दुनिया ने हिटलर के शब्दों को, मीन कैंप में लिखी बातों को ज्यादातर नजरअंदाज किया,
उन्हें एक कट्टरपंथी का ख्याल ही बुलाओ समझा।
हाँ, उन्हें खारिज कर दिया, और इतिहास गवाह है कि ये कितनी बड़ी, कितनी भयानक भूल थी। यह हमें सिखाता है कि चरमपंथी विचारों को पहचानना और उनका सामना करना जरूरी है, इससे पहले कि वो हकीकत बन जाएं। हमें शब्दों के पीछे छिपे इरादों को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए।
ये बहुत जरूरी बात है, शब्दों के पीछे के इरादे। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह चर्चा आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत की गई है।